Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Brahma ko humne dekha nahi hai, suna hai, shabd roop hai. To ek छोटा सा शब्द शास्त्र पकड़ा देता है, ओम सबसे छोटा है, इसीलिए इसको अक्षर ही बोला. ध्वनि मान लो, सर्वम ये तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म. अब ये बात पहले मंत्र में नहीं कही गई थी, ये आत्मा भी ओम है, ये ऐसा नहीं कहा था. अब यहां कह रहे हैं कि ये आत्मा ब्रह्म है, ये विशेष है. स अयम आत्मा चतुष्पात. स माने वही जो ब्रह्म परोक्ष, जिसको ब्रह्म शब्द से जाना जाता है. और अयम आत्मा, अयम माने ये प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से जिसको हम मैं करके जानते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों ब्रह्म है. तो कैसे ज्ञान हो इसका, कि चतुष्पाद, इसको चार भागों में विभाग करके अब हम समझाते हैं. यही उपव्याख्यान है इसका. स्वामी महेशानंद जी महाराज ने एक बात लिखी है कि ओंकार का सिर्फ मान लो जप ही करें, जैसे राम 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 बोलते हैं, ऐसे ओम 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 बोले, तो क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां तो ध्यान का प्रसंग चल रहा है, तो उसके क्या जप मात्र से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं कि हो तो सकता है, बशर्ते कि जप में दो चीजें का ख्याल रखा जाए. जब नाम और नामी एक ही है तो नहीं होने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए उसमें. एक तो ये कि उसे अनेक इष्ट के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए. बोले एक माला उसकी भी कर लो, एक माला उसकी भी कर लो, एक माला उसकी भी कर लो, तो अब क्या, एक फावड़ा यहां मारोगे, एक फावड़ा यहां मारोगे, एक फावड़ा यहां मारोगे, तो कहीं भी पानी निकलने वाला नहीं है. और उसी फावड़े को एक ही जगह मारते रहो तो कभी ना कभी तो पानी निकलेगा. तो एक तो इसमें एक निष्ठता होनी चाहिए, लक्ष्य की और साधन की. बोले अपने मन से तो हम ओम कर लेते हैं. एक सज्जन कह गए गृहस्थों को ओम नहीं जपना चाहिए, तो बोले फिर क्या करें, कि हरि ओम कर लिया करो. अच्छा, दूसरे आए बोले नहीं ये तो सांप्रदायिक बातें हैं, आप राम राम बोलो, ये बहुत सरल है. अब राम राम चलने लगा ना. कृष्ण वाले आए, कृष्ण को पकड़ा गया. तो ये जो अनेक इष्टों में बुद्धि जाती है, इससे जप अपना फल नहीं देता. एक इष्ट एक मंत्र, एक ग्रंथ एक पंथ, ऐसा महाराज जी बोलते थे. तो ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु से स्वामी प्रबोधानंद जी ने कहा कि तुम इतने बड़े नैयायिक हो, विद्वान हो, तुमको तो विद्वानों के साथ ये नच के ही एक गवाइयों के साथ जो घूमते फिरते हो, हरे राम करते फिरते रहो. ये कहां, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत बढ़िया था, वो निष्ठा के लिए है। बोले हमारे गुरुजी ने हमको इसी काबिल समझा होगा, इसलिए हम तो उसी के प्रति समर्पित हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार नहीं करते, गुरु आज्ञा के अनुसार करते। आखिर कितने गुरु बनाओगे? एक गुरु से संतोष नहीं होता। जहां भी श्रद्धा तो घूमती फिरती है, किसी के भी गले में माला डालने को तैयार। नारायण। तो एक तो इसमें इष्ट और मंत्र के प्रति एक निष्ठता होनी चाहिए, और दूसरे जप भी करते जा रहे हैं और टेलीफोन भी सुनते जा रहे हैं, और भी बहुत से काम करते रहे। आजकल कहते हैं ना सब, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, हमें तो टेप सुनना अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि टेप सुनते सुनते हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, और किताब पढ़ते पढ़ते दूसरे काम नहीं कर सकते। नारायण, यहीं की बताते थे महाराज श्री कि किसी ने कहा महाराज जी आपको रुपया चाहिए, रुपया ले लो, कोई किसी को दिलवाना हो तो हम दे दें, लेकिन हमसे वक्त की बात मत करो, टाइम हम नहीं दे सकते। तो महाराज जी बोले हाँ भाई, आपके पास वक्त कहाँ है, आप तो कम वक्त हैं। उच्चारण का ही तो फर्क है, थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो कम वक्त का दूसरा मतलब भी निकल जाएगा। तो जितने टाइम हो एक निष्ठा से होना चाहिए। तो दूसरा कोई उस टाइम में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है, ये जो कर्मकांडी लोग निगाह वाले होते हैं वो कहते हैं इतने इतने करोड़ मंत्रों का जप करेंगे भगवान का दर्शन होगा कैसे? नहीं, भगवान तो नाम के अधीन है। तो बोले भगवान किसी के अधीन नहीं है, ये जो भगवान को किसी साधन के अधीन मानना है ये भी जप में हानिकारक है, वो फल नहीं देता। भगवान तो अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे तो अपनी तरफ से कृपा करेंगे, वो न करें कब करें कहां करें ये तो उनकी इच्छा के ऊपर है, आपका काम सिर्फ जप करना है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन वासु। ज्ञान दीपक तो जलाएंगे वो, और कृपा करके ही जलाएंगे। तेषाम एव अनुकंपार्थम एव, अनुकंपा करने के लिए ही जलाएंगे। लेकिन उसके लिए आप समय निर्धारित कर दो कि बस इस टाइम तक हो जाना चाहिए, नहीं तो। बोले नहीं तो क्या? कि हम आपका नाम जपना छोड़ देंगे? मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू मेरा नाम जप। हरिओम। तो सर्वम हेतद ब्रह्म, तो ब्रह्म कहो ओम कहो, इसमें साध्य साधन में कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कहते हो सब ओंकार है तो भगवान कहते हैं कि सब ब्रह्म है, यही तुम्हारा तात्पर्य है, मैं समझता हूं। क्योंकि मेरा नाम है तो मुझे चाहे ओम के नाम से बुलाओ चाहे किसी के साथ। अब इसकी व्याख्या यहां पे इतनी रहने दो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सर्वम येतद ब्रह्म, ये तो वेदांत का सिद्धांत है ना, ज्यादा व्याख्या करेंगे तो फिर इसी में सारा काम हो जाएगा, उपनिषद तो धरा ही रह जाएगा। तो सर्वम येतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है नारायण, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ये उसका महावाक्य है। तो जैसा आपको मालूम ही है, यहां तो वेदांती ही हैं सब लोग, वेद में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक अवांतर वाक्य और एक महावाक्य। तो जितने साधन साध्य संबंधी बातें हैं वो सब अवांतर वाक्य के अंतर्गत, और जहां ऐक्य का अनुसंधान है, चाहे वो आत्मा और ब्रह्म की एकता का हो, चाहे ब्रह्म और जगत की एकता का हो, चाहे ब्रह्म और ईश्वर की एकता का हो, ये जितने भी ऐक्य के स्थान हैं, ये इनके जो वाक्य हैं वो सब महावाक्य कहलाते हैं। तो बिना महावाक्य का विचार किए हुए वेदांत सिद्धांत का बोध नहीं होता, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, ये पक्का सिद्धांत है। तो ये अयम आत्मा ब्रह्म हो, अयम माने यही, इसको भाष्यकार ने लिखा कि अंगुली निर्देशन न्याय है, जैसे उंगुली से दिखावे कि देखो यही अयम जिसको तुम मैं बोल रहे हो, अयम आत्मा यही ब्रह्म है। इसमें जरा माफ करना, थोड़ा भेद कर लो, मैं ब्रह्म हूं और अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें थोड़ा फर्क है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि में तो मैं ब्रह्म हूं, और अयम आत्मा ब्रह्म में मैं शब्द का प्रयोग नहीं है, आत्मा शब्द का प्रयोग है। वैसे आत्मा का अर्थ भी मैं होता है, लेकिन ये मैं जो है ये आत्मा का नाम है, क्योंकि इस मैं का तो सुषुप्ति में ही दर्शन नहीं होता, जिसको मैं बोलते हैं। अगर इसको ब्रह्म बताना इष्ट हो, ये छोट भैया जो है, अगर इसको ब्रह्म बताना इष्ट हो तो वेदांत तो उल्टी पलटी बात बोलने लगेगा। अरे बोले, इस छोट भैयेपने को छोड़ करके जो मैं है वो मैं ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है। मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक हंसी की बात सुना रहे, तो एक सज्जन नाक में बोलते थे, तो अपने बच्चे को, टीचर थे प्राइमरी में, तो उन बच्चे को उन्होंने भेजा उसके पास पढ़ने के लिए। अब उसने पढ़ाना शुरू किया, वो पंडित जी नाक में बोलते थे, तो बोले बोल बेटा ख। अब वो बालक आया घर पे, बोले आज क्या पढ़ा, बोले ख। हमको तो मास्टर जी ने यही बताया। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, फिर वो टीचर के पास गए, बोले आप क्या पढ़ाते हो, बोले मैं तो ठीक पढ़ाता हूं, बोले पढ़वाइए, बोले बोल बेटा, तो बोला बोले ये कहाँ है क्या, तो बोले क्या है फिर, बोले ये कहाँ है, तो बोले यही तो बोल रहा हूं मैं कहाँ। तो बच्चे से बोले तो बेटा मेरा वाला कहाँ नहीं, पिताजी का कहाँ बोल। तो ये मैं जो छोटा सा मैं, ये मैं नहीं, कौन ये शास्त्र जिसको मैं बोलता है, अस्मत् प्रसिद्धम, ये तो उसकी प्रसिद्धि कर रहा है सर, कि हाँ आत्मा नाम की कोई चीज है। महाराष्ट्र कहते थे जैसे दाल में चुरुर चुरुर बोलती है, तो वो उसके पकने का लक्षण है कि खद का पड़ रहा है भैया, अब ठीक है, बनने वाली है दाल। तो ये आत्मा जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है, अहम 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 अहम। एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे मान लो मैं इस फूल को देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये भी स्वामी महेशानंद जी महाराज ने लिखा है। बोले पदार्थ तो हमको दिखता ही नहीं है, आत्मा है, आत्मा के बाद अज्ञान है, अज्ञान से फिर अहम की उत्पत्ति होती है, फिर अहम से मन की उत्पत्ति होती है, फिर मन से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, फिर नेत्र का विषय है यदि तो फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए, और फिर वस्तु में जो रंग है वो चाहिए, उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर चाहिए। इतनी सब चीजें देखते हैं लेकिन वस्तु तो हमको दिखाई नहीं पड़ती है ना, तो ब्रह्म क्या चीज है इसमें? सब ब्रह्म है ये तो कह दिया हमने, लेकिन ब्रह्म है क्या? इसीलिए कहा कि बाहर तो तुम्हें ये सात पर्दे वाली चीज नकाबपोश मिलेगा यहां ब्रह्म तो, लेकिन ये जो आत्मा है यहां का नकाब आप हम आसानी से हटा सकते हो। इन सातों पर्दों को यहां पे फाड़ दो, यहां पे तो आत्म का जो साक्षात्कार होता है उसी को ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं। फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये फूल भी ब्रह्म है, और फूल ब्रह्म है यहां से शुरू करोगे तो ये अयम आत्मा ब्रह्म नहीं होगा। तो स्वयं आत्मा चतुष्पाद, पहले त्वम पदार्थ का विवेचन स्पष्ट होना चाहिए आत्मतत्व का, उसके बाद तत्पदार्थ का विवेचन होना चाहिए। लेकिन साधक दो तरह के होते हैं, कुछ भाव प्रधान होते हैं तो पहले वो तत्पदार्थ से का शोधन करते हैं, लेकिन वो वेदांत में बहुत उपयोगी नहीं होता, क्योंकि तत्पदार्थ के शोधन में कार्य कारण प्रक्रिया बस यही है, और तो कोई प्रक्रिया है नहीं। किसी ने ईश्वर को सृष्टि बनाते हुए देखा नहीं है, देखा भी नहीं है और देखा जा सकता भी नहीं है, इसलिए वो भाव मूलक ही रहता है वहां कार्य कारण। कार्य कारण हमेशा प्रत्यक्ष में तो सिद्ध होता है, ये माला जिसने बनाई जिससे बनाई वो सब चीजें प्रत्यक्ष हैं, माला तैयार हो गई, तो प्रत्यक्ष में तो कार्य कारण किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन जो चीज अनुभव में ही नहीं आती किसी के में, उससे प्रत्यक्ष की सिद्धि करने लगो तो विश्वास तो ठीक है लेकिन वो अनुभव का विषय नहीं बन सकता। और ये जो आत्मदेव है ये तो अनुभवात्मा है, सारे अनुभव इसी से होते हैं, यहीं बैठ करके होते हैं, इसी में होते हैं, इसलिए यहां तो आप अनुभव कर सकते हो, इसमें से सिर्फ जो इसके पर्दे हैं वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो कोशिश कैसे करें कि स्वयं आत्मा चतुष्पाद, इसको चार भागों में विभक्त करके इस आत्मा का साक्षात्कार करो। अब ये प्रक्रिया हुई, इसका नाम प्रक्रिया, स्वय आत्म चतुष्पाद। तो भाष्यकार ने लिखा कि जैसे गाय के चार पैर होते हैं ऐसे ही क्या आत्मा के भी चार पैर होते हैं? पाद माने पैर, तो चतुष्पाद माने पशु जैसे चार पैर वाला होता है, तो आत्मा भी क्या ऐसे ही पशु है चार पैर वाला है? अरे बोले नहीं भाई, गऊ की तरह से चार पैर वाला नहीं, जैसे रुपए में चार चवन्नी होती हैं, या कहीं का सिक्के का नाम लिखा है भाष्यकार ने कारशापण, तो रुपए की जगह चलता होगा तो कारशापण में भी चार चवन्नी चार हिस्से। अब आपके पास रुपया है मान लो, उसके चार टुकड़े करके कहें कि ला भाई चवन्नी की ये सब्जी दे दे, तो कोई नहीं देने वाला है। चवन्नी का सिक्का दोगे तब तो मिल जाएगा, टुकड़े का सिक्का नहीं चलेगा, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। पहले तो शायद चांदी थी तो इसलिए दे भी सकते थे, तो उसमें कुछ है ही नहीं। वो तो कागज के नोट में चार टुकड़े करोगे तो क्या मिलेगा। तो इसको तोड़ना मोड़ना नहीं है, बस समझ करके छोड़ देना है। चार जगह इस आत्मा का दर्शन करो, ये इसका मतलब। तो सबसे पहले कहां करें, तो बोले जागृत अवस्था में करो। देखो जितने अज्ञान हैं वो भी जागृत अवस्था में हैं, और जितने ज्ञान होते हैं वो भी जागृत अवस्था में। सपने का न ज्ञान का कोई मतलब है, न सपने के अज्ञान का कोई मतलब है, क्योंकि वहां तो समूचा स्वप्न ही एक तरह से झूठ की कक्षा में है, इसलिए उससे कुछ होता वाता नहीं। वैसे विचार सागरी वेदांत जो है उसमें ऐसा मानते हैं कि सपने में भी किसी को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाए तो भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो अर्थवाद है, वो वास्तविकता नहीं है। अज्ञान हमेशा शब्द मूलक होता है। ये अगर कोई वेदांती है तो उसको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अज्ञान हमेशा शब्द मूलक होता है। जैसे मुझे फूल का ज्ञान नहीं है, मैं कहता हूं ये तो चमेली का फूल है, है तो गेंदे का फूल। अब ज्ञान नहीं है तो इसलिए मैं कहूंगा ये तो चमेली का फूल है, तो क्या मुझे ज्ञान नहीं हो रहा? रूप का भी ज्ञान तो हो रहा है लेकिन मिथ्या ज्ञान हो रहा है। तो मिथ्या ज्ञान को ही अज्ञान बोलते हैं। और ये गेंदा की जगह जो चमेली आ गई, माने राइट वर्ड की जगह जो रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल हो गया, ये भी अज्ञानी हो गया। अज्ञान जो होता है वो हमेशा शब्द मूलक होता है, बिना शब्द का कोई अज्ञान नहीं होता। इसलिए अगर अज्ञान को काटना है तो वो भी शब्द से ही कटेगा। जो कहते हैं कि समाधि लगा लो तो हमारा अज्ञान भाग जाएगा, तो वो समाधि में तो शब्द ही नहीं रहता ना रहे। हां पहले जागृत अवस्था में आपका अज्ञान निवृत्त हो जाए, फिर आप समाधि में अगर इच्छा होगी लगाओगे तो समाधि में भी आपको वही अनुभव होगा, लेकिन समाधि में अनुभव होगा जागृत में अनुभव नहीं होगा ऐसा नहीं है ना। यहीं बैठे बैठे ही अनुभव होगा। आपको चाहिए तो आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप सुने किसी की भी वाणी जहां भी आपकी श्रद्धा जमती हो, और लगातार सुने, अनुभव हुए बिना रहता नहीं है, क्योंकि अनुभव स्वरूप तो आत्मा है ही है। सिर्फ अरे की बात है, अरे अच्छा ऐसा है, स्वीकृति हो गई। अभी तो मेरी स्वीकृति है कि मैं मनुष्य हूं, मैं आदमी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमका हूं। जो मैं नहीं हूं वास्तव में उनकी स्वीकृति तो हमारी हो रही है, और जो मैं हूं उसको हम पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं है। तो ये जो अन्यथा ज्ञान है, माने दूसरा दूसरे रूप में जो ज्ञान हो रहा है, इनको काटना है। तो ये शब्द से ही काटता है, हीरा ही हीरे को काटता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये वेदांतियों पे आक्षेप भी करते हैं ना कि ये तो खटपट में ही रहते हैं, शांति में, आत्मा तो शांति है, मेरे को जाओ हिमालय में, वहां जाकर आपको मिलेगा। वो सहकारी साधन तो हो सकता है शांति इत्यादि, लेकिन मुख्य साधन नहीं है। यहां भी हो सकता है और भीड़ में भी हो सकता है। अष्टावक्र जी ने कहा ना, अरे मैं तो जन समूह में रहता हूं लेकिन मुझे तो द्वैत दिखता ही नहीं है। तो दुनिया कहां है, सड़क पर चलते हो इतनी भीड़ चल रही है ना कि कोई ना आपको पहचाने ना आप किसी को पहचाने, तो आप तो अकेले ही हो। जब कोई नहीं दिखेगा तब समझोगे कि मैं अकेला हूं। जब आप किसी दूसरे को पहचानते हो तो दुखेले हो जाते। तो कहते हैं पहले जागृत अवस्था में इसको पहचानो। अब कैसे पहचाने, ये तीसरा मंत्र है, बस पाठ तो कर ही देता हूं इसका। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथम पाद। ये पहला चरण है जागृत अवस्था। इसमें सब में सात सात विभाग हैं। जैसे यहां गिन लो, जागृत स्थान एक, बहिष्प्रज्ञ दो, सप्तांग तीन, एकोन विंशति मुख चार, स्थूल भुक् पांच, वैश्वानर छह और प्रथमा पाद ये सात। ऐसे ही स्वप्न में भी सात विभाग करके बताएंगे और सुषुप्ति में भी सात विभाग करके बताएंगे। और फिर जब तीनों जगह आत्मा की पहचान हो जाएगी तब फिर कहेंगे अब असली आत्मा को सुनो, तो तीनों का सप्पम सप्पा वो सातवां मंत्र है। देखो कहां तक पहुंचते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।